सुर्खियों में।
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश यात्रा और गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर। आज का दिन उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेतु कहे जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को आज जनता को समर्पित किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया दौर प्रस्तुत करने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत, और साथ ही आज हरदोई में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह और इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हमारे संवाददाता ओम जी अवस्थी भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो ओम जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, हरदोई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया, तो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा ब्यौरा हमारे श्रोताओं को दें, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा, लोगों का कैसा उत्साह था, और प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी अहम बातें जनता के सामने रखी।
जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए उत्तर प्रदेश में लोग बहुत उत्साहित थे। हरदोई समेत आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जैसे ही जनता को गंगा एक्सप्रेसवे को समर्पित किया, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गंगा एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार देने के साथ, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल देगा और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बनेगा आने वाले समय में, और यह सिर्फ सड़क नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन का एक आधार भी है। गंगा एक्सप्रेसवे को 5 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे, और इसके विस्तार की योजना पर भी अभी से काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात को खास तौर हाईलाइट किया कि जब इस तरह का एक्सप्रेसवे और प्लानिंग के साथ बनता है तो उसका बहुत व्यापक असर होता है और लोग उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। और माँ गंगा के नाम पर जो एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया, उन्होंने कहा ये विरासत और विकास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संगम और काशी तक पहुंच अब आसान और तेज हो जाएगा।
तो इस बीच हम ओम जी सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता को संबोधित किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे ये 5 साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। एक और गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है।
वीरेंद्र जी, आपको हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे, कैसे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण न सिर्फ यातायात बल्कि एक आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा सेतु बनने जा रहा है, आप इसे कैसे समझाएंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश अभी तक जो है भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसका करीब 55% के आसपास को अकाउंट करता था, और गंगा एक्सप्रेसवे आने के बाद ये 60% हो गया है। और आप इस चीज को मानेंगे कि जब एक एक्सप्रेसवे या बहुत बड़ा हाईवे, बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट आता है, तो ना केवल वो यातायात को सुगम करता है, कार्गो को बहुत फास्ट कनेक्टिविटी देता है, बल्कि उसके आसपास बहुत सारे नए नए सिटीज, टाउन्स आप देखेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आने लगते हैं। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे क्योंकि यूपी का नॉर्थ का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, करीब 600 किलोमीटर का है, और इसको बाद में मेरठ से हरिद्वार तक भी ले जाने की योजना है। तो आप देखेंगे इससे जो भी पूरा जो 12 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, ना केवल वो डिस्ट्रिक्ट बल्कि उसके आसपास के 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक जो है इसका एक डेवलपमेंट का पूरा एजेंडा जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम करेगा। जो वहां पे फार्मर्स के जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको फास्टर कनेक्टिविटी मिलेगी, नए नए टाउन्स आएंगे, नए नए टाउन्स आने से जो अर्बन डेवलपमेंट होगा, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे, लॉजिस्टिक्स हब्स जो तैयार होंगे, उससे जो है वहां की जो अर्थव्यवस्था को बहुत सारा बल मिलेगा। और उत्तर प्रदेश 2030 तक भारत की पहली $1 trillion इकोनॉमी की तरफ बढ़ने पे पहले से अग्रसर था, जो कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस चीज को मेंशन किया। तो आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेसवे है ये उसको बहुत बड़ा बल प्रदान करेगा, एक गेम चेंजर की तरह साबित होने जा रहा है।
जी, आपने जैसा कि कहा एक गेम चेंजर बनकर ये सामने आएगा। ओम जी, हम आपसे इस एक्सप्रेसवे की कुछ खूबियों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे बड़ी जो विशेषता हमें सुनने में ये मिल रही है कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का जो समय था वो करीब 12-13 घंटे लगता था, वो घटकर 6-7 घंटे रह जाएगा, और भी कुछ विशेषताओं की ओर आप गौर करना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, एक तो ये प्रयागराज और मेरठ के बीच समय को 12 घंटे से घटाकर लगभग 6 घंटे के आसपास हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेस में शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी है जो भारतीय वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में काम आएगी। यह प्रोजेक्ट औद्योगिक विकास, व्यापार और कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में खासकर इस तरह से प्लान किया गया है कि इसके जो प्रमुख मार्गो में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 21 स्थानों पर इंटरचेंज विकसित किए गए हैं जिससे आवागमन पूरी तरह निर्बाध रहेगा। प्रोजेक्ट की एक खासियत यह भी है कि इसे भविष्य की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। आने वाले वर्षों में जब ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो उस स्थिति में इसे 6 से 8 लेन किया जा सकता है। इसके लिए जमीन अक्वायर अभी से कर ली गई है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पे हर 1 किलोमीटर पर सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 9 आधुनिक जन सुविधा परिसर वाले फूड कोर्ट हो गए, फ्यूल स्टेशन है, विश्राम स्थल है, इस तरह के बनाए गए हैं ताकि जो लोग इससे ट्रेवल करेंगे उनको काफी सुविधा मिलेगी, काफी आसानी होगी। और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जो है करीब एक लंबा सर्विस रोड बनाया गया है जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि वीरेन जी कह रहे थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के लिए ये एक्सप्रेसवे किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में योगदान कर सकता है, लोगों को बेहतर जीवन देने में योगदान कर सकता है, उस सब चीजों का ध्यान इसके निर्माण में रखा गया है।
जी वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस हब बनता हुआ एक राज्य है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे की झलक तो हमने देखी, उत्तर प्रदेश में और कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो अभी जिन पर काम चल रहा है और आने वाले समय में जिनका उद्घाटन होते हुए हम देख पाएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
जी, जैसे अभी ओम जी ने भी बताया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं, ना केवल गंगा एक्सप्रेसवे पे कि जितने भी और पहले भी बन चुके जो एक्सप्रेसवेज हैं उसके इर्द गिर्द जो है दोनों तरफ जो है लैंड एक्वायर करी जा रही है जहां पे इंडस्ट्रियल हब्स बनेंगे। एक लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया बना रहा है, उसका भी उद्घाटन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि कानपुर जो है सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है इधर सेंट्रल यूपी का और लखनऊ जो है कैपिटल के साथ एक कमर्शियल हब है, तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। बाकी बहुत सारे लिंक एक्सप्रेसवेज यूपी में डेवलप हो रहे हैं जिनका टोटल लागत के आसपास अगर नापा जाए तो करीब करीब 60 से 70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो लिंक एक्सप्रेसवे का काम करेंगे। जो डिफरेंट एक्सप्रेसवेज अभी यूपी में ऑपरेशनल है या जो प्रपोज्ड है उनको इंटरलिंक कर दिया जाएगा जिससे एक सीमलेस कनेक्टिविटी, जो 75 जो यूपी के जिले हैं उनकी जो है एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, किसी भी कोने से दूसरे कोने में जाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यूपी में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है उसमें भी जो 6 नोड्स हैं उसकी भी कनेक्टिविटी इन एक्सप्रेसवेज की वजह से बहुत आसान हो जाएगी। और जैसा आप देख रहे हैं जिस तरह के एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उभर के आ रहा है, ये डिफेंस कॉरिडोर हमारे ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि इंडिया के लिए बहुत ही आगे जाके ये एक डिफेंस जो हमें जो आत्मनिर्भरता जो हासिल करनी है उसके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।
तो जैसा कि इस बार का जो वित्त बजट था उत्तर प्रदेश का वीरेंद्र जी, वो करीब 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक अच्छा खासा भारी बजट था जिसमें बुनियादी ढांचे को लेकर भी अच्छा खासा आवंटन किया गया। तो जैसे केंद्र सरकार भी बुनियादी ढांचे पर बहुत अच्छा खर्च कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी किस तरह से प्रदेश में बुनियादी ढांचे की ओर फोकस कर रही है जिससे कि राज्य का विकास बुनियादी ढांचे से और तेज हो?
जी देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में जो उत्तर प्रदेश के लिए जो उसके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो केंद्र की सरकारें होती थी अलग अलग पार्टियों की होती थी, अब पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है तो त्वरित गति से विकास हो रहा है, निर्णय बहुत तेजी से हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ने भी चीज माना है कि उत्तर प्रदेश का एक परसेप्शन पहले बहुत खराब हुआ करता था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे बिजली की स्थिति के बारे में हो और भी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो एक पैरामीटर थे उसमें बहुत लो रहता था। तो अब ये जब से एक्सप्रेसवे बनने शुरू हुए हैं तो एक्सप्रेसवे, देखिए एक्सप्रेसवे क्या होता है कि बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट तो होता है, दूर से दिखता है, फिजिकल एसेट होता है जो दूर से दिखता है, लोग उसमें ट्रेवल करते हैं चाहे टूरिज्म के लिए आए, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टर्स आए, चाहे माल की ढुलाई होती है, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से सफर करें, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपको फिजिकली दिखाई देता है, तो इसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी जब इन्वेस्ट करता है तो 2-3 चीजें मूलभूत देखता है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी देखता है, वहां के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, यूपी का पॉलिसी फ्रेमवर्क भी पिछले कई सालों में बहुत सुदृढ़ हुआ है, बहुत सारे पुराने लॉज को सब्स्यूम कर दिया गया है, नए नए पॉलिसीज लाई हैं। तो जब आप एक होलिस्टिक व्यू में इसको देखेंगे, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बल्कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क को सही करना, और इसको भी देखेंगे कि गंगा एक्सप्रेस में करीब 36,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश हुआ है जो कि यूपी के अपने बजट से निकला हुआ है और 5 साल के अंदर भी ये तैयार हो गया है, तो ये भी एक उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसको आगे बढ़ाने का जो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो भी इन्वेस्टर देखता है, उससे भी वो प्रभावित होता है और इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह इन्वेस्टमेंट और आता है प्रदेश में।
आपने निवेश की बात की वीरेंद्र जी, तो एक हम आज टर्म पढ़ रहे थे जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश अब निवेश के मामले में एक उभरता हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से एक्सप्रेसवे और जो बुनियादी ढांचे हैं उसका लगातार विकास हो रहा है, तो यहाँ की जो GSDP है वो 30 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाएं कि GSDP क्या है और किस तरह से लगातार इसके बढ़ने से उत्तर प्रदेश एक बहुत उभरता हुआ विकास के मामले में राज्य बनकर सामने आया है।
जी, सकल घरेलू उत्पाद जैसे कि नेशनल GDP होता है तो स्टेट के लिए GSDP कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश जैसे आपने 30 लाख करोड़ का, इस समय करीब 35 लाख करोड़ के आसपास जो हमारा GDP हो गया है, जो हमारे इंडिया में टॉप 3 में आ गया है। और जैसे बजट की आपने बात करी तो यूपी का बजट जो है इंडिया के सबसे बड़ा बजट है। वैसे तो तमिलनाडु या महाराष्ट्र हमारे GDP के मामले में अभी भी हमसे अग्रणी है, लेकिन बजट के मामले में तो जब आप बजट को और हमारी जो GSDP है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, जब इसको एक चश्मे से देखेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो कि पिछले 5-6 सालों में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य था, ना केवल अपने बजटरी एलोकेशन या साइज में और GSDP में बहुत पीछे था, हमारी जो है पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी, जो डबल हो गई है पिछले 6-7 सालों में। तो जब आप इसको एक होलिस्टिक व्यू में एक परिदृश्य में देखेंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश ने कई मानकों में बहुत अच्छे नए नए आयाम अर्जित किए हैं, और इन आयामों को अर्जित करने में ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, नए नए एयरपोर्ट्स हो। यूपी में आप देखिए कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस समय है, जो नोएडा में अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है और जिसकी जून में जो है कमर्शियल फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगी। तो उससे भी, और गंगा एक्सप्रेसवे और जो जेवर को आप एक साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ना केवल भारत में बल्कि पूरे साउथ एशिया में और आने वाले समय में मुझे लगता है एशिया में भी एक निवेश का एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल हब की तरह उभर रहा है।
ओम जी, आपको भी हम चर्चा में लाना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेसवे की खासियत पर हम लौटें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं कि किस तरह से अब जो बुनियादी ढांचे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें कैसे तकनीकी से इनको और ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है, अगर आप उदाहरण देना चाहें गंगा एक्सप्रेसवे से तो।
हाँ, तो निश्चित रूप से तकनीक का बेहतर इस्तेमाल समय के साथ किया जा रहा है। जैसे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में सिर्फ तकनीक ही नहीं, जैसे जो वेस्ट होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, इसके बना निर्माण में इस्तेमाल किया गया है, बड़ी संख्या में जो वेस्ट को इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहा गया है कि पेड़ों को कम काटना पड़ेगा और करीब 18 लाख पेड़ लगाए गए हैं, तो जिससे मतलब 18 लाख पेड़ लग सकते हैं, इतना वेस्ट बचाए, मिट्टी बचाई गई है जिससे 18 लाख पेड़ लग सकते हैं। अदरवाइज वो मिट्टी इस्तेमाल होती है, उसकी जगह पर वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत की अगर बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर हैं, 12 जो है पहले से डिसाइड किए हैं कॉरिडोर के साथ, 12 ऐसे क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं जिसके लिए लगभग 6500 एकड़ जमीन जो है चिन्हित कर ली गई है, और करीब आपने अभी निवेश का जिक्र किया था तो करीब 987 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसके लिए करीब 47,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। तो जो एक बड़ा निवेशक है उनको आकर्षित करेगा इस तरह का एक्सप्रेसवे, और गंगा एक्सप्रेसवे एक बहुत अहम भूमिका रखता है उसमें, क्योंकि जिस तरह की इसकी लेंथ है इससे NCR भी जुड़ेगा और भविष्य में आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका विकास होगा, तो उस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है उत्तर प्रदेश के विकास में आने वाले दिनों।
तो जैसा कि वीरेंद्र जी, ओम जी ने हमें बताया कि किस तरह से एक लंबी लेंथ है इस एक्सप्रेसवे की, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है, तो ऐसे में जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, कैसे उत्तर प्रदेश ने इसमें बीते सालों में काम किया है, कुछ आप उदाहरण देना चाहेंगे जो हाल ही के जो एक्सप्रेसवे के साथ साथ दूसरे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं।
जैसे अभी परिचर्चा में अभी तक जो निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश ना केवल एक्सप्रेसवे बल्कि एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स, कंटेनर हब और क्या कहते हैं आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सारे मानकों को आगे लेके चल रहा है, क्योंकि एक होलिस्टिक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इन्वेस्टर होता है खासतौर से बड़ा इन्वेस्टर, जो ना केवल भारत के इन्वेस्टर बल्कि जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन सब चीजों को रखते हैं, क्योंकि भारत में जितने भी प्रदेश हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन की प्रतिस्पर्धा होती है कि अपने यहाँ कौन कितना जो है इन्वेस्टमेंट लेके आता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी कंडक्टर का भी एक प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया, साउथ में जो अग्रणी स्टेट पहले से रहे हैं जो कि आईटी में और जो इन मानकों में पहले से आगे रहे, तो उनसे उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धा है, तो कंपटीशन है। तो जब तक हम निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, इस तरीके का पॉलिसी फ्रेमवर्क जब तक एक पॉजिटिव नहीं देंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश ने इस चीज को समझा है कि जब तक हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ढांचा है उसको सुधार नहीं करते, क्योंकि पिछले कई सालों में पूर्ववर्ती सरकारों में ये बहुत पिछड़ गया था, उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, अभी भी हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में, 25 करोड़ है, आप सोचिए यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन नहीं। तो जब इन सारी चीजों को हम जो है एक परिदृश्य में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को बहुत ही त्वरित गति से विकास करना होगा, जिससे न केवल वो अपने प्रदेश का विकास हो बल्कि देश में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश तभी बढ़ेगा जब उत्तर प्रदेश बढ़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी अवस्थी और वीरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।